और आप देखिए कि जब एक इंसान किसी काम की असल पे चला जाता है ना, तो मेहनत करनी आसान होती है। मसलन आप में से किसी के बच्चे डॉक्टर हो सकते हैं, आप में से भी कोई हो सकती हैं। जितना एक डॉक्टर बनने के लिए एक बच्चा बच्ची पढ़ता है, आप में नहीं पढ़ सकते। वजह क्या है? हमारे सर पे नहीं पड़ी, हमारी बला से हम क्यों इतनी हड्डियों के नाम याद करें और हमें इतनी दवाइयों के क्यों नाम याद करने। बट वही इंसान जब कमिटमेंट करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो कर जाता है। वजह क्या है? उसको पता है इसके बगैर मफर नहीं है, मुझे किसी ने डिग्री भी नहीं देनी है अगर मैंने ये सारे टेस्ट पास ना किए। इसी तरह से आप और मैं बड़ी ख्वाहिश करते हैं, किसी को भी देखते हैं हम कहते हैं हाय अल्लाह कितना वो दीन का काम करता है, हमसे भी करा। हाय अल्लाह फलां उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, कभी हमारे भी बच्चे ऐसे हों। ख्वाहिशें करते हैं, करनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वफी ज़ालिक फल जतना फसिल मुतनाफिसून, कुरान पाक में आता है। इसी के लिए तो रग़बत करनी चाहिए रग़बत करने वालों को, यानी फ़फ़िरु इलल्लाह वसारु इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ भाग करो। बट जब हमें उसके मराहिल से गुजरना पड़ता है, हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ताला चाहते हैं कि एक मुसलमान दुनिया में अल्लाह का नुमाइंदा बन के जिए। और याद रखिए कि इस दुनिया में दो जंगें मुसलसल चली हुई हैं, या कुरान में आता है सूरत हशर में आप पढ़ लें, हिजबुल्ला और हिजबु शैतान। कुछ लोग हैं जो अल्लाह के गिरोह के लोग हैं और कुछ शैतान के लोग हैं। अल्लाह वाले अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, शैतान वाले शैतान की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो मेरा गिरोह है ना, वो शैतान के मुकाबले पे जब निकले इसको कामयाबी हो, ये फलाह वाले लोग हैं, उसके लिए आपको मुझे रोज़े रखवाए जाते हैं। देखिए ना, दुश्मन सर पे हो तो आप कह रहे नहीं, इट्स माई लंच टाइम, इट्स माई स्नैक टाइम, इट्स माई टी टाइम, इट्स माई ब्रेकफास्ट टाइम, इट्स माई डिनर टाइम, इट्स माई अर्ली लंच और अर्ली डिनर। यानी हमारे तो तीन नाम थे ना पहले, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, नाश्ता दोपहर का खाना और रात का खाना। ये आज से कुछ 10-15 साल पहले था, अब इन नामों में कितनी चेंजेस आ गई। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे बैड टी, तो मैं उसको हमेशा कहती थी बैड टी। सुबह उठते ही मैदे में गर्म टी डाली तो वो बैड ही होगी ना, हैं? फिर आप देखिए स्नैक्स एपेटाइजर, क्या दिन ब दिन हम मुसलमान खाने पीने के मामले में बिगड़ते नहीं जा रहे? इतनी इन्वेंशंस तो हमने दुनिया में कोई सूरज चांद गैलेक्सीज की नहीं की, जितनी हमने खानों की कर ली हैं। फिर आप देखिए जी ये हाई टी, हाई टी पता क्या होती है? इतना कुछ रख दो कि बंदा हसरत लेकर आए कि सारी डिशें तो चखी नहीं है, चाय के साथ इतना सामान। आप देखिए हमारे शादियों में जब भी खाने पकते थे, पुलाव कब खिला रहे हो, जरदा कब खिला रहे हो, मतंजन कब खिलाना है? शादी में पुलाव और पीछे मीठे में मतंजन और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, रायता रखा, सैलड रखा, ऐसे ही था ना। बड़े लोगों की शादियों में साथ गोश्त का सालन बन जाता था। आज की हमारी एक शादी में एपेटाइजर के नाम पे 10 चीज़ें और सारी फ्राइड तली हुई। और उसके बाद जब खाना सर्व करते हैं, मैंने खुद एक शादी को अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ, तो अब वो आ रहा जन्नत की तरह, वलकुम फी हमा तद्दाउन सूरत खामीम सजदा में, अल्लाह ताला कहता है तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, वहाँ जन्नत की खूबी है। अब दुनिया में ये हो रहा है, एक चीज़ आ रही है मज़े से खाई, सब ने खूब पेट भर के पापड़ी चाटी खा ली, उसके बाद वो फ्राइड फिश ले आए, नगेट्स ले आए, दो दो चार चीज़ें, भाई वाह कितने अच्छे हैं यहाँ खाना खिला रहे हैं। बाद में पता चला कि ये तो अभी सिर्फ आपको वो स्नैकिंग करा रहे हैं, स्टार्टर कह लें और एपेटाइजर है। तो जब असल खाना लगा, बिलीव मी ये मैं अपनी आंखों देखा वाकया बता रही हूँ, और हमारे लोग फ्राइड चीज़ों पे तो खुशी बड़े होते हैं, और चिकन मीट खा पी के खूब जितना खाना था खा लिया है, हालांकि सबको पता था कि बाद में खाना लगना है, काउंटर्स लगे हुए थे। उसके बाद जब वो पुलाव सालन, क्योंकि जी गवर्नमेंट ने वन डिश की इजाज़त दी हुई है, उसमें वन डिश है, बिलीव मी पूरे हॉल में से 10% लोगों से ज़ायद लोगों ने जाकर उन काउंटर्स पे झांका भी नहीं, किधर गया वो खाना? वो हमारे अपने ख़ानदान के लोग थे, शादी ख़त्म हुई सब चले गए, हम अपने वो उनके पास पहुंच गए जो होस्ट थे, उनको बताया कि ये बताएं खाना, कहते हैं ये सारा खाना इधर है, अब इसको दोबारा करेंगे, कहते इजाज़त नहीं है। शादी ख़त्म होती है 12 बजे के करीब, 10 बजे तक वो लाइटें बंद करते हैं, लोग निकलते हुए 11 बजाते हैं, जब बहरे खाना जमा करेंगे रात 12 बजते हैं, कहते हैं अब इसको क्या करें। हम कहते हैं कि तमाम से एक दो मदरसों से बात की हुई है, रात को कुछ वॉलंटियर्स या कुछ लोग रखे हुए हैं, ये खाना फलां फलां मदरसे में पहुँचा देंगे, लेकिन जो खाना बचता है उसमें से 80% खाना ज़ाया होता है। क्या ये नदीदापन नहीं है? क्या ये हर साल 30 या 29 रोजे रखने वाली कौम का हाल है? और जो खाना बचता है उसको ऐसे ट्रैश किया जाता है, और हमारे गरीब मुल्क में, यहाँ भी सारी दुनिया में यही हाल है हमारे, नखरा हमारा इतना है, तो ये रोजे रखने वाली कौम तो ऐसी नहीं होती। अल्लाह ताला तो आपको मुझे इस एक महीने में ये रोजे रखा के ये सिखाते हैं कि देखो, वन डिश अगर गवर्नमेंट ने कही है ना तो उसको मानते हो ना, तो मैं भी तुम्हें वन डिश ही कहता हूँ। आपको कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मीट खाया एक वक्त में, आज हमारे पास गुंजाइश ही नहीं, कोई चॉइस ही नहीं होती। हमारा मेन्यू कैसे बनता है? पुलाव में गोश्त डाल लेते हैं, सालन चिकन का बना लेते हैं, और ड्राई आइटम में फिश कर लेते हैं। तीन डिफरेंट मीट आपने अपनी बॉडी में डालने हैं एक वक्त में। आपको कहते तीनों का डाइजेशन लेवल डिफरेंट है। जो लोग थोड़ा सा मेडिसिन को जानते हैं उनसे पूछिए, ये खाना हमें सेहत बन के नहीं लग रहा आज। फिश ने जल्दी हज़म होना था, ये अलग बात है, हम उसको खूब मर्च मसाले और फ्राइड करके ज़रा हैवी करते हैं, भी बहन थोड़ी देर बाद हज़म होना, राइट। चिकन ने ज़रा उससे ज़्यादा टाइम लेना था, और बीफ और मटन है वो तो और ही टाइम लेगा। आप ये तीन इकट्ठे जो खा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये ख़त्म हो जाना है बाद में? कभी ऐसा हुआ आप और मैं, हम सब सिस्टर्स हैं, घरों में मेन्यू कार्ड बनते हैं ना, क्या आप एक दावत में एक किस्म का मीट नहीं यूज़ कर सकते? वो कहते हैं इसलिए रखा जाता है कि कुछ लोग फिश नहीं खाते, और वाकई कुछ हो सकता है नहीं खाते होंगे, कुछ चिकन नहीं खाते और कुछ मीट नहीं खाते, तो वो क्यों रखते हैं कि जिसको जो नहीं सूट करता वो ना खाए, जो सूट करता खा ले। हम क्या करते हैं? हाँ, कहते हैं आज सारा गुजायज है, हम वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाते हैं प्लेटों में, नीचे थोड़ी सी चावलों की ज़मीन बनाते हैं, फिर ऊपर बोटियों के पहाड़ लगाते हैं, फिर रोटियों से टॉपिंग करते हैं, सैलड करके भर के ला के रखते हैं, फिर कहते खाया नहीं जाता इतना आजकल, पता नहीं क्या हो गया। ये रोज़े रखने वाली कौम नहीं है। आज अगर इंसानियत को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए ईटिंग मैनर दे दें, तो वो बात सच साबित हो जाएगी कि मदीना शहर में कोई एक भी तबीब नहीं था। सुनी हुई रिवायत, कोई भी नहीं था। एक तबीब दूर से आया, उसने कहा यहाँ तो बड़ा बिजनेस मिलेगा, है ही कोई नहीं, दुकान खोलता हूँ, जैसे नई जगह पे चीज़ चल जाती है। कोई आया ही नहीं। कुछ दिन हफ्ते जो भी गुजरे होंगे, किसी को पूछा, भाई तुम लोग बीमार नहीं होते? कहा नहीं होते। अब आप इमेजिन करें, मदीना की बस्ती जो उस दौर में भी गरीब बस्ती थी, मक्का अमीर था, मदीना गरीब था, ये ज़रात वाले लोग थे जैसे गांव के लोग होते हैं, बीमार नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कहा इसलिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे अमल करते हैं, पेट में जगह रख के खाते हैं, हमारे पास कोई बीमारी नहीं आती। क्या मदीना आज के ज़ुबान में कह लीजिए कि बहुत हाइजीनिक कंट्री था? क्या वहाँ गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया हुआ था लोगों को बीमारियों से रोकथाम के लिए? कुछ भी नहीं था, वो बीमार नहीं होते थे। वजह क्या है कि वो उन तरीकों पे अमल करते थे जो वही के सिखाए हुए थे। आज आप देखिए जिन मुल्कों में हम सब रहते हैं, किसी में भी रह लें, 19-20 का ही फ़र्क है ना, पूरा यूरोप ले लीजिए, उससे आगे जाइए अमेरिका, कनाडा, लिविंग स्टैंडर्ड के अतबार से 19-20 का ही फ़र्क होगा, चले 18-20 का होगा। कितनी एफर्ट, कितनी फिल्ट्रेशन, कितने गवर्नमेंट के चेक, एक्सपिरेशन डेट, इस्तेमाल नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, इसको फेंक दो, और कितना एयर को पोल्यूशन से बचाते हैं। शायद 2 से 3 माह होंगे कि मुझे साथियों ने बताया कि कल शहर में फलां किस्म की गाड़ियां नहीं चलेंगी। भाई क्यों नहीं चलेंगी? तो उन्होंने बताया कि कल डीजल वाली गाड़ियां गवर्नमेंट की तरफ से मना है, तो हमें मसला होगा आने जाने में। क्यों? तो जवाब क्या दिया गया ज़रा सुनिएगा, हम तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते अपने मुल्कों में। गवर्नमेंट ने कहा कि इस सीज़न में फितरतन स्नो हो जानी चाहिए, तभी इस साल नहीं, क्योंकि बहुत लेट स्नो आई है इस दफ़ा, और ये मुझे याद आ रहा है अक्टूबर नवंबर की बात है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि स्नो नहीं आई, तो अगर डीजल की गाड़ियां चलेंगी कल, तो लोगों के अंदर जरासीम आएंगे, घरों में बैठो, इतनी हेल्थ। तो फिर इसका नतीजा तो ये होना चाहिए ना कि पूरे मुल्क में हॉस्पिटल बंद, डॉक्टर्स ख़त्म, कोई ज़रूरत ही नहीं, उतनी ज़्यादा बीमारियां हैं। गरीब मुल्कों में नजर आने वाली बीमारियां हैं, अमीर मुल्कों में ना नजर आने वाली बीमारियां हैं, और कुछ नहीं तो उसको डिप्रेशन और हाइजीनिक प्रॉब्लम्स कह दें, कुछ भी कह दें। जो वही के जरिए से लाइफस्टाइल दिया जाता है उसको अपनाने में सेहत ही सेहत है। फिर आप देखिए चंद चीज़ें और इसमें अगर आपके सामने रख दूं, शायद किसी एक को फ़ायदा हो जाए। हर साल टिपिकली हमारा एक ख़ास मेन्यू होता है रमज़ान में, बचपन से पता है कि पराठा, दही, और कुछ लोग पराठे के साथ सालन भी खाते हैं, सहरी में पराठे लाजमी हैं, ऐसे ही होता है ना, जहन में आता है। और इफ्तारी में पकोड़े या समोसे, एक दिन पकोड़े एक दिन समोसे, पहले ऐसे होता था, एक बनती थी चीज़। मैंने अब ये भी जुल्म देखा है कि माँ एक दिन में तीन चीज़ें ही बना रही है, उसके बावजूद मियाँ कहता है मैं अपनी इफ्तारी साथ ला रहा हूँ। भाई पकौड़े क्यों, ये इसको पसंद है, समोसे क्यों, वो उसको पसंद है, या ये पकौड़े नहीं खाता, वो समोसे नहीं खाता। जितने बच्चे हैं घर में उतने डिफरेंट मेन्यू एक ही दिन में चल रहे होते हैं, ये आदत है, ये आदत नहीं है। अगर आप वाकई रियल में चाहते हैं आपके बच्चों में वो जज्बा ईमान पैदा हो, जो वो उनके दिल में दीन की खिदमत का शौक हो, कि जो वाकई नबी सल्लम के दौर में था, मुआवज़ का नाम सुना, मुआज़ का नाम आपने सुना, ये इब्ने अब्बास, इब्ने मसूद, ये छोटे छोटे बच्चे थे, हज़रत ज़ुबैर, ये बहुत नबी सल्लम के हाथों में पैदा हुए हुए बच्चे थे, आप कह लीजिए। नबी सल्लम की वफ़ात के वक्त तो उसामा बिन ज़ायद की उम्र ही 17 साल थी, टीन एज थे, अभी तो स्वीट टीन भी नहीं आई, लेकिन क्या जोश था, क्या जज्बे थे, एड़ियां उठा उठा के बच्चे खड़े होके दिखाते थे, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे जाने दीजिए। और वो बच्चे मैदाने जंग में अबू जहल को ढूंढते हुए दिख रहे होते थे कि कहाँ है वो अल्लाह का दुश्मन, क्यों, क्योंकि ये नबी को गाली देता था। आज मैंने इससे बात करनी है, ये तो जंगों के वाक्यात है ना, अमली जिंदगी में भी आप देखिए, बच्चा बच्चा दीन को सर्व करने और नबी सल्लम के दिफा के लिए खुद को तैयार समझता था। वजह क्या थी कि उनके खून के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी। अब दो बच्चों की बात की है तो फिर हमें अपने बच्चों को भी याद करना है, सच बताइए, माजरत के साथ। शुक्र है मैं नए शहर में बैठ के ये बात कर रही हूँ, आप में से चंद लोगों के नामों और उससे ज़्यादा कुछ के चेहरों के अलावा मैं आपको नहीं जानती, मुझे नहीं पता आपके कितने बच्चे हैं कितने नहीं, क्या है, लेकिन ओवरऑल देखें तो आज के दौर में उम्मते मुस्लिमा क्या अपने बच्चों के हाथों परेशान नहीं है। पहले छोटे छोटे बच्चों के मसले ज़्यादा थे, तंग करते हैं, बीमार हो जाते हैं, ये वो, अब बच्चे बड़े होते हैं तो मसले भी बड़े। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो मुझे वर्ल्ड वाइड ही कहूँगी उम्मते मुस्लिमा में दिख रहा है, वो रिश्तों और शादियों और निभा का मसला, या तो रिश्ते नहीं मिलते, मिल जाएँ तो ज़्यादा दिन चलते नहीं, चल जाएँ तो बाद में मसले शुरू हो जाते हैं, बर्दाश्त की कमी, सब्र की कमी। और रोज़ा ये दो ही चीज़ें सिखाता है, इसी सीरीज़ में एक लेक्चर आएगा सब्र और शुक्र, यानी रोज़े का दोनों डिफरेंट डायमेंशन से हम देखेंगे, या रोज़ा सब्र है या शुक्र है। आप मुझे ये बताइए, वही बच्चे हैं, हम भी तो वही थे ना, कोई जीन्स तो नहीं बदल गए, कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बदल गया, पैदा होते हुए शुरू से लेके जो बच्चे थे, आपकी नानियाँ दादियाँ, आपके मामू, आपके अपने दौर के, आपके कजन्स, और आज के दौर में कोई जेनेटिक कोड तो नहीं चेंज हो गए, बट आज माएँ क्यों बेबस दिखती हैं बच्चों के आगे, उसकी वजह ये है कि हम उनको तकवा नहीं दे रहे। एक दिन भूखा रखें एक दिन खिलाएं, माजरत के साथ अगर आपके जज्बाते ममता पे चोट पड़ी है मेरे इस जुमले से, लोग मुझे पूछेंगे आपके बच्चे हैं, कितनी सख्त दिल है आपने, इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन अगर वाकई आप अपने बच्चों के दिल में अपनी भी मोहब्बत डालना चाहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की, तो आपको ये कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। आप देखिए आर्मी में जो जाते हैं उनको कितनी सख्त ट्रेनिंग करवाते हैं वो, अगर उनके लाड ही देखते रहे तो दुश्मन के आने पे तो वो खुद लाड दिखा रहे होंगे। सर्दियों में कहते हैं बर्फ पे चलो, और गर्मियों में धूप में जैकेट पहना के कहते हैं धूप में भागो, चने खिलाते हैं कि 2 दिन तुमने कुछ नहीं खाना, क्यों, कि दुश्मन ने जब आना है तो हो सकता है इनको किसी जंगल में रहना पड़ा, किसी सहरा में, कांटों पे चलो और कूद पड़ो और दरख्तों पे क्लाइम करो, जिसने दुश्मन का मुकाबला करना है उसके अंदर ये सारा कुछ होना चाहिए ना, ये सब कुछ करेंगे तो शैतान से कम अज कम, और नहीं मैं कहती बड़ी बात, अगर शैतानी हमलों से तो हमने बचना है कि नहीं बचना, हम नहीं जिहाद की बातें करते, हम नहीं जंगों की बातें करते, हम नहीं कहते जी हमने अपने बच्चों को दीन के दिफा के लिए कहीं भेजना है, छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, ये बताइए कि फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती हमारे घरों में, आज के दौर में फजर के साथ सौतेला सलूक नहीं हो रहा बाकी 4 नमाजों की निस्बत, मस्जिदें रोती होंगी फजर के वक्त। अब तो ये भी देखिएगा, लिख ले मेरी बात, आज की डेट है 14/4/2017, यानी 14 अप्रैल को ये बात आपको 2017 में बता रही हूँ, जिस तेज़ी से हमारे इस्लाम के ऊपर अब गैरों के कमेंट्स आके हमें अंडर कॉन्फिडेंट किया जा रहा है ना, आज से कोई 8-10 साल रह गए हैं, लोगों ने कहना है 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ना एक्सट्रीमिज्म है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये हमारी नींदें ख़राब करते हैं, फजरों पे उठ के गाड़ियों के हॉर्न बजाते हैं, और ये रात गर्मियों में, आपको पता है नॉर्वे में रात 12 बजे ईशा होती है। आधे से ज्यादा लोग इस मसले में पड़े होते हैं कि जागें तो सोएं क्या करें, सुबह फिर स्कूलों में जाना है भेजना है, कई इश्यूज होते हैं ना अपने अपने मुल्कों के। लोगों ने कहना ये जुल्म और ज्यादती है कि अब एक अल्लाह की इबादत जो हर वक्त जागता है और सोता नहीं है, लाता खुजू खुशीना तो मौलाना, माँ बाप उसके लिए खड़े हैं बैठे हैं ईशा के लिए 2-12 बजे तक, आप पढ़ लें 10 बजे सो जाएं, बड़ी ज़रूरत है। आज के दौर में मैंने देखा है 5 वक्त मस्जिद में जो मर्द जाके नमाज पढ़ता है, खुद जाके पढ़ ले, कोई नहीं रोकता, कहीं चला जाए किसी को उसको पढ़ानी पड़े। लोग कहते हैं ये मौलवी साहब बड़े मुश्किल हैं जी, ये नहीं हो सकता, हम और सब खिदमत कर सकते हैं। ये आज ही उम्मत पे वक्त आ गया है, तो ये जो अल्लाह ने फजर के वक्त पे उठाना था ये क्यों? और रोज़े की ज़रा सी डायमेंशन पे भी देखिए, क्या ये मुमकिन नहीं था कि रोज़ा शुरू होता 9 बजे, जब हम मज़े का नाश्ता करके फारिग होते, ज़्यादा खा लेते, चलो ब्रंच कर लेते, खाना पीना पाए रोटी सालन सारे इकट्ठे खा लेते हैं, और रोज़ा ख़त्म हो जाता है 5 बजे जब हमारा डिनर का टाइम आता। ड्यूरेशन उतनी ही होती जितनी अब नॉर्मली होती है, ये क्यों 9 की बजाय 4 बजे गई फजर और आपकी सहरी पे क्यों रोज़ा शुरू हुआ? जोहर से लेके आप देखिए, आप फजर से मगरिब है ना रोज़ा, तो जोहर से ईशा नहीं हो सकता था? क्या सिखाया? आदत तोड़ो, इबादत बनाओ, उठो पहले, पहले तो नींद छोड़ोगे, फिर उसको भूख नहीं खाओ, सहरी में बरकत है खाओ, नहीं खाओगे तो वो बरकत नहीं मिलेगी जो बाद में मिलनी है, ऐसे ही है ना। और मगरिब की नमाज का वक्त कितना थोड़ा है, बड़ी मज़े की बात अब आपको बताने लगी हूँ अल्लाह के हुक्म से। देखिए जितनी भी नमाजें फ़र्ज़ है ना हम पे, 5 है ना, सबसे कम वक्त किस नमाज का होता है? मगरिब का, उसी बका रोज़ा तोड़ो, समझ आइए एक बात। कई लोग नमाज छोड़ देते हैं खाते खाते में, मैंने खुद ऐसी जगह अटेंड की हैं, ये हमारे अपने कल्चर की बात नहीं है, नाम नहीं लेने की ज़रूरत, मुसलमानों में से एक ऐसा गिरोह है एक मुल्क का कि वो रमज़ान में भी मगरिब नहीं पढ़ते। हमें इत्तेफाक हुआ किसी भी जगह हम लोग थे, तो हमने कोई हॉल लेना था अपने किसी प्रोग्राम के लिए, तो देखने जाना था कि वहाँ क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमारे पास आप आ जाइए किसी भी मगरिब पे, वहाँ इफ्तारी भी होती है, तो आप लोग देख दाख लें और पसंद आए तो आप डील कर लें। तो हम चंद साथी स्कूल की तरफ से वहाँ इफ्तारी के लिए गए, बिलीव मी कि हैरत गुम हो गई कि मगरिब का वक्त है, और उस वक़्त उन्होंने यानी इतनी बेहतरीन, यानी मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा हैं वो लोग, उन्होंने खाना सर्व कर रहे हैं, सूप बने हुए हैं और साथ आपको घावे दे रहे हैं। तो हमें ये था कि अभी नमाज होती है, किस्सा मुख्तसर। हम इंतज़ार कर कर के, हमारे साथ 2-3 मर्द भी थे, हम लोग भी थे, कि ये लोग उठ क्यों नहीं रहे नमाज के लिए, बल्कि हमें शक ये हुआ कि शायद हमें इधर आने में देर हो गई है, कि रोज़ा खुल गया तो हम आए, तो शायद ये पढ़ के बैठे हैं, नहीं हुआ। एक एक करके खुसर फुसर, क्योंकि बेचैनी लग जाती है, थोड़ा बहुत खाया। तो हमारे मर्दों में से 2 मर्द थे, मेरे हस्बैंड तो पहले ही उस हाल में नहीं गए, वो तो जाते ही सीधा मस्जिद में, वो खजूर खा के नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो भी खाना है। खैर इन्होंने अजान दी, जो हमारे साथ 2 ब्रदर थे उन्होंने साथ मिलके, हम खवातीन ने जाके मस्जिद से मुलहिक, बिल्कुल जैसे ये हॉल है ना मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ हॉल है, हम लोगों ने उधर अकेले नमाज पढ़ी। अब क्या हो रहा है, चले वापस देखे, जब गए तो वो भी भिखा रहे, हमें देख के वो उनकी सिस्टर ने रोका है, खानों पे खाने जा रहे हैं और खूब मतलब अच्छे तरीके से वो सर्व कर रहे हैं, कि हम समझे कि अब शायद फिर खुशगवानी यही है कि जितनी देर हम इस हॉल से निकले हैं तो हमने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी, हो सकता है इन्होंने हॉल में पढ़ ली होगी। जब पूछने खींचने पे बात हुई, बिलीव मी ईशा की नमाज का वक्त हुआ, जब ईशा की अजान हुई उस वक़्त वो लोग उधर से निकले, उधर जाके पहले उन्होंने 3 फ़र्ज़ पढ़े, और अल्लाह मुझे मुबालगे से बचा दे कि तरावी उस मस्जिद या उस ग्रोह में, ये मुझे एक से ज़्यादा रिवायतें पता है, खुद मैंने अपनी आंखों से भी देखा, तरावी के एक एक आयत की, व तीन व ज़ैतून अल्लाह अकबर, ये हाल है आज उम्मत का। मैंने उनके मुल्क की गवाही भी ली, एक बच्ची गई थी किसी की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तरावियों में एक एक आयत, दो दो आयतें एक एक तरावी में पढ़ते हैं, और 10 मिनट में 20 तरावियाँ पढ़ के फारिग। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ क्यों मगरिब गई आगे, खाना फ्रूट भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, तो क्या हुआ, ये इबादत बनी कि आदत बनी? इस्लाम हमें क्या सिखाता है, देखिए आप खुद देखें, मैं इस वक्त रोज़े के बेनिफिट्स पे नहीं बात करना चाह रही, लेकिन अगर आप देखें तो ये हमारे स्टमक के लिए कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें चंद घंटे फारिग रखा, और ये सब कुछ स्पिरिचुअली देखा जाए तो एक साल में अगर 29 या 30 रोज़े आपने शऊर के साथ रख लिए, तो बाद में मुश्किल ही नहीं होती, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो खुलासा क्या निकला? अब आप लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे तो इसमें मजीद बातें कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सवाल क्या निकला आज की इस बात में से कि रोजे रखने हमने, तो हमने पहले तो ये चेक करना है कि इसके अंदर से निकलता क्या है। मर्जी टूटी, नींद छूटी, ऐसी है ना। फिर आप देखिए कि लंबे रोजे हैं, ये भी तो अल्लाह ताला कह सकते थे दिसंबर में रोजे रख लो, छोटे रोजे, सर्दियों के रोजे। पूरे साल में अगर आपको अल्लाह ताला 30 साल की जिंदगी दे तो फिर आप पूरा साल एक एक दफा रोजे रख चुके होते हैं। वाई आप अब नॉर्वे में आप देखिए हर साल इश्यूज उठते हैं, हर साल उठते हैं कि इतना लंबा रोजा है। अब ये फितना आ गया, 2 साल हो गए पिछले 2 या 3 साल से, कि कुछ लोग वक्त पूरा करके असर के बाद खोल लेते हैं। आपने सुनी थी ये बात कभी अपनी इतने सालों की जिंदगी में? वो कहते हैं नहीं टाइम पूरा हो गया खोल लो, तो मैंने कभी मगरिब कब पढ़नी है, वो वहीं पढ़नी है। कुरान क्या कहता है? अतिम्मु सियाम इलल लैल, रोजा पूरा करो रात तक। फितने, नफ्स के फितने। इस वक्त एक बहुत बड़ा जर्म कह लीजिए, वायरस कह लीजिए, जो उम्मत में आया हुआ है ना, वो नफ्स परस्ती का। खाना, हमारी ईटिंग हैबिट्स ही नहीं है ठीक। आज से जाके अपने बच्चों के साथ काम करें, उनको ज़हनी तौर पे तैयार करें। बेटा इस साल के रोजे ऐसे, अभी से बैठे हैं ना, अभी 1.5 महीना, 30 दिन का मेन्यू बना ले, सिंपल, सारा कुछ पकेगा इंशाल्लाह। बट एक दिन में एक चीज़ पकेगी, एक दिन में आपकी पसंद का, दूसरे दिन आपकी पसंद का, तीसरे दिन आपकी, चौथे दिन आपकी पसंद। और जो पकेगा वो सब इस शौक में खाएंगे कि कल इन्होंने मेरी पसंद से खाया था, आज मुझे भाई की पसंद का खाना है, आज अब्बू की पसंद का खाना है, आज दादी की, आज अम्मी की, आज बहन की है, अच्छा मेरी बारी अब 7वें दिन आनी है। ये होगी ट्रेनिंग। मर्जियाँ छोड़ो, ये कोई मुसलमान उम्मत नहीं तैयार हो रही कि जिन्होंने जाके कोई हिजबुल्ला में शामिल होना है या शैतान से जंग करनी है, जो इतनी नफ्स परस्तियों का शिकार हो गई, वल्ला ही डर रही है कि दुश्मन आया बैठा होगा, हम कहेंगे जो मर्जी कर लो, और आए बैठे हैं दुश्मन, कहाँ कहाँ नहीं आए हुए। हम खबरें सुन लें और बस उसी पे थोड़ा अफसोस का इजहार कर लें, फिर कहते लाओ मीठे में क्या आज, तो अपने आप को भी हमने तोड़ना है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं इस मौजू पे, प्लानर्स हैं, इंशाल्लाह आगे भी शायद सेट करती रहूँगी आपको, मतलब मज़ीद चीज़ें हम ऐड करेंगे इसके अंदर, लेकिन आप लोग खुद अपना प्लानर बनाएं, और इसके लिए माइंड सेटिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि जो लोगों को शुगर हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं अब चीनी खाने को दिल ही नहीं करता, वजह क्या? जहन बना लिया है, आदत हो गई। नमक, ब्लड प्रेशर हाई है, नमक मना, वो कहते हैं कि इट्स फाइन, मैं इसके बगैर ही ठीक हूँ। हम नहीं खा सकते फीका खाना, वो खा लेते हैं। आपने, मैंने इस साल इंशाल्लाह रमज़ान में ये ट्रेनिंग देनी है खुद को भी, और क्यों देनी है? स्पिरिचुअलिटी है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि सहाबा जैसी तब्दीलियाँ अब क्यों नहीं आती? आपने भी तो सुना ही है ना, 100 कुछ मुल्क हैं टोटल मुसलमानों के, आज अब किधर हैं? आज आप 2017 में बैठी हैं, आप अपनी उम्र को पीछे ले जाएं, कब किसी आखिरी मुल्क के मुसलमान मुल्क होने का नाम आपने सुना? देखिए ना, अबू बकर, उमर का दौर, सभी को अगर थोड़ी सी कहानियों से पता हो, कैसरो किसरा, फारस, ईरान, बाबल, हर जगह इस्लाम आ रहा है। ये तो हजरत उमर के तोहफे हैं ना कि 10 सालों में इतनी, यानी 1/3 ऑफ मुस्लिम अरब दुनिया जो थी वो मुसलमान हो गई उस दौर में। अब क्यों नहीं होते? ख्वाहिशों में पड़ गया। हम जिंदगी को एक दुनिया की जिंदगी समझे, और देखिए एक साइकिल आपने कभी देखी है ना, एक एक्सल पे घूमते हैं ना पहिए, तो साइकिल चलती रहती है, वो एक चेन जरा सी उतर जाएगी ना उसमें से तो साइकिल रुक जाती है। अगर हम अपने जो 101 मसाइल लेके बैठे हुए ना आज, बच्चों के, बड़ों के, शोहरों के, बीवियों के, फैमिलीज के, सिर्फ वो एक्सल से उतरे हुए हैं, गो बैक टू दी बेसिक्स कहते हैं ना, वापस जाएं, उन्हीं तौर तरीकों को अपनाएं, आजमा के देख लें। सिर्फ 1 साल, मैं कहती हूँ सिर्फ 1 साल दे दें खुद को और अपने घर वालों को ट्रेनिंग का, अब से शुरू करके अगले 1 साल तक आप जिंदगी में वो तौर तरीके लाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के थे। अगले साल जिंदगी रही इसी हॉल में, आज ही की तारीख में अगर हम मिले ना, तो आपने कहना है कि आधे से ज्यादा मसले मेरे खत्म हो गए, क्योंकि जो कुछ हम अपने बच्चों को आज खिला रहे हैं वो भी कुछ ज्यादा हेल्दी नहीं है। प्री कुक चीजें, फ्राइड चीजें, फ्रोजन चीजें, केमिकल्स वाली चीजें, और आजकल तो इतनी मुझे लगता है कंपेन चल उठी है, आपको भी आते होंगे मैसेजेस क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं जो चीज़ें इस वक्त खूबसूरत लेबल्स में छपी हुई हम देख रहे हैं। सिंपल खाने पे आइए, वो ग्रैंड माँ कुकीज़, अमेरिका की फेमस कुकीज़ हैं, ग्रैंड माँ कुकीज़। जिस चीज़ को ओरिजिनल दिखाना होता है उसके साथ उस ग्रैंड माँ लगाते हैं वहाँ, सिंपल सा रूल है। वो क्रैकर्स भी हैं और दलिये भी हैं, कुकीज़ भी हैं और सब है। वापस ले आए अपने आप को अपनी नानी दादी के खानों के तरीकों पे। देसी घी घर का बना हुआ इस्तेमाल करें, देसी आटा इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स को ज़्यादा यूज़ करें, फ्रेश सब्जियां करें। ये फ्रोज़न चीज़ें और ये जो भी चीज़ें हमें बाहर पेस्चराइज मिलती है इसको छोड़ दें। 1 साल के बाद आप कहेंगे हमारे बच्चे हाइपर नहीं रहे, अब बीमार नहीं होते, दे लिसन मोर टू अस। आज एक और भी इशू है, ये अब बच्चों की तरबियत पे जाएंगे तो फिर बात आगे चली जाएगी, लेकिन इशारे काफ़ी हैं कि जो हमारे आज बच्चों के साथ हमारा मामला है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह हम उनके अंदर क्या डाल रहे हैं। गाड़ी के अंदर अगर सुप्रीम की जगह डीजल डाल देंगे तो वो झटके देगी, हल्का सा कचरा आ जाएगा ना पेट्रोल में तो गाड़ी झटके देगी। ये हमारे बच्चे जो हमें झटके देते हैं ना, ये रमज़ान बेहतरीन मौका है, इसको तोड़िए। आप कुछ कहिए, अब कोई सवाल, कोई बात, कुछ भी जो आप समझते हैं कि फायदा दे सकती है।
पता है क्या, जिस तरह आप खाने का बता रही है ना,
जी
एक तो वो जो मोबाइल है, जो फोन है, ये बच्चों को ले बैठा। पहले पता है क्या हुआ करता था, बच्चे मेरे बच्चे हैं, हम इकट्ठा एक कमरे में बैठा करते थे। बस बच्चे आ गए हैं, आराम से बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कोई दिन की बात कर रहे, जिस तरह करते। आजकल जो बच्चे हैं ना, वो कुछ हम माए नहीं, उन्हें इतनी छूट दी हुई है कि बस वो अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं, उससे खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ
जी, जजाकला खैर।
ज्यादा उसको रोकने की भी जरूरत है।
तो फिर इस पे आपकी ही बात को सदका जारिया बनाते हुए बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ान में दौरे कुरान होता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग सुनते हैं, नहीं सुनते, हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग किसी भी मीन से, वेबसाइट, ऑनलाइन कोर्सेज, व्हाट्सएप क्लासेस के थ्रू सुनते हैं क्लासेस को हमारी? जी ज़्यादा लोग नहीं हैं। मुझे भी फील होता है कि स्कॉटलैंड एक नया इलाका है हमारे लिए, एक न्यू कमर है ना। तो सिर्फ एक छोटी सी जो आपके फ़ायदे की इन्फॉर्मेशन होगी, ये जो आंटी जी का सवाल है ना, इस साल हमारा पूरा दौरे कुरान इस थीम पे है। इस वक्त उम्मत को जो दीमक लगा हुआ है ना, वो टाइम वेस्टर्स का, न खट्टू निकम्मे नकारा हो रहे हम। इस साल पूरा महीना हमने इस पे बात करनी है। आप कहेंगे ये क्या होता है दौरे कुरान, तो दौरे कुरान होता है, तो थोड़ा सा बता दूं कि दौरे कुरान का मतलब तो होता है कुरान पाक का ट्रांसलेशन। अक्सर तो दौरे कुरान में ट्रांसलेशन ही पेश किए जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये खाना पूरी है। सच्ची बात है, ये भी अब एक आदत बन गई है। मैंने एक दर्स इस पे भी देना है कभी, कि दौरा कुरान आदत या इबादत। बस सुपारे रखे हैं, कोई सो रहे हैं, जाग रहे हैं थोड़ा, क्योंकि मेरा ईमान है कि कुरान के लफ्ज़ भी बहुत हैं, लेकिन वो अरबी लफ्ज़ हैं। उठने लगा दस बारह बुरा हो गया। ये पिछले 8-10 साल से अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह ही दिल में डालता है, हर साल रमज़ान का दौरे कुरान एक डिफरेंट थीम पे हम लेते हैं। जैसे मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली दफ़ा स्कॉटलैंड में आई थी, तो मैं 2009 का दौरे कुरान मैनचेस्टर में करवा के इधर आई थी 4 दिन के लिए। फर्स्ट ट्रिप था मेरा इधर। तो उस साल जो दौरे कुरान किया था, वो अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर, कायनात पे गौर व फिक्र था। उसको अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उसकी USB भी और हर जगह वो गया। अभी भी शायद, मुझे नहीं पता आपके पास है नहीं, लेकिन वो USB में पूरा दौरे कुरान है जो जाता है। फिर 2010 में हमने तज़किया नफ्स को किया, हर पारे का एक थीम। अभी इस साल हम इसको कई जगह शुरू कर रहे हैं, और जगहों पे, इस हसद पे, बुग़्ज़ पे, रकाबत। लोग कहते हैं कुरान पढ़ लेते हैं, तज़किया ही नहीं होता। वजह क्या, कि आदत है। बिलीव मी, कुरान पढ़ने पढ़ाने लिए भी कई पढ़ाइयाँ हमारी आदतन हो रही हैं। सब तजवीद कराते हैं, हमने भी करानी है। सब ग्रामर कराते हैं, हमने भी करनी है। सब तर्जमा याद कराते हैं, हमने करना। वो नहीं दे रहे आप जिसने दिलों को बदलना था। वो तज़किया नहीं है, वो तरबियत काम है। तो बहरहाल इसी तरह हर साल से होते होते जो लास्ट ईयर का हमारा थीम था, जो नॉर्वे में हुआ है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को याद है? जी, एटलांटा से जो 2015 में हुआ था ना, वो उम्मते वसत के नाम था। पिछले साल कुछ और था, अल कुरान हयाती, कुरान मेरी ज़िंदगी है। इस साल हमारा इंशाल्लाह दौरे कुरान 22 मई से शुरू हो जाएगा। 21 को वेलकम रमज़ान, और 22 मई आप दुनिया में जहाँ भी हैं आप नेट के थ्रू उसको सुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस शहर में, आप जैसे आज सब बैठे हैं और हमारी ये बात अगर नेट हो तो बाहर के लोग सुनते हैं ना, बहुत जगह ऐसे, हर शहर, हर मुल्क में स्टेशंस बनते हैं, कुछ साथी आपकी हेल्प को लेकर करके आपको यूँ बैठेंगे और आप हमारे साथ लाइव भी सुन सकते हैं, ताकि क्लास का मज़ा भी आता है। तो बहरहाल यह कि वो मई के इंशाल्लाह लास्ट वीक में शुरू होगा, इन्फॉर्मेशंस आपको पहुंचेंगी, आप में से किसी का दिल करे तो ये जो बात आपने की है इस पे इतना कुछ तैयार है। और हम फिर हर साल दौरे कुरान में रीडिंग मटेरियल भी सेंड करते हैं जो स्टूडेंट्स साथ आते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इस मौजू पे हमने बहुत कुछ सुनना है इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं आपकी बात से 100% मैं एग्री करती हूँ, इस वक्त माएँ अपने बच्चों को अगर इस पर नहीं रोकेंगी, बिलीव मी हैंडीकैप्ड बच्चे, मैं एक लफ्ज़ बोल देती हूँ, जो इन चीज़ों का असर आ रहा है हमारे बच्चों के फिजीक पे, उनके माइंड पे, ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स हैं जो जमा किए जा रहे हैं हमारे चारों तरफ से, कि जो हमने इस दौरा कुरान में शेयर करना है इंशाल्लाह। टाइम वेस्टर्स, जज़ाकअल्लाह खैर वसन जज़ा, अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ा दे। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमारे जो भी सीखे हुए पे बरकत दे और आसानियों का मामला करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، يا الله ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، ہماری اصلاح فرما، سب ساتھیوں کے دلوں کی نیک حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما، یا اللہ سب کے بچوں کو اور ان کے شوہروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان عبادات کو اس کی روح کے ساتھ کر سکیں، یا اللہ یہ آنے والے دن بہت قیمتی ہیں، ہمیں ابھی سے ذہنی طور پہ رمضان موڈ میں آنے والا بنا، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ابھی سے پلاننگ کریں کہ ہم نے اس سال اس رمضان میں کیا بری عادات چھوڑنی ہے اور کیا اچھی عادات کو اپنانا ہے، اور یا اللہ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں کسی مشکل میں، کسی بیماری تکلیف میں ہیں، آپ اپنی رحمت سے ان کو اسے نجات دے، یا اللہ تو ہمیں پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچا کر اپنے راستوں میں بھاگ دوڑ کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں دین کے کام اس طرح کرنے والا بنا جیسا کہ کرنے کا حق ہے، اس مسجد پہ اور جو بھی ساتھیوں نے اس در اہتمام کیا ان کو قبول فرما، اور یا اللہ مسلمانوں کو دین کی جو اصل اسپرٹ ہے اس سے جوڑ دے، ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ جو بھی کرتے ہیں یا اللہ اس کو بعد میں ہماری عملی زندگی میں نظر دلا، اور ہم اس کو لے کر پھر دنیا میں تیرے دین کو عام کر سکیں، اور یا اللہ جو بھی آن لائن سے گھر سے بات میں بھی سنتے ہیں ان کو بھی قبول، ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، جو ساتھی دنیا بھر میں اس دین کے پیغام کو عام کرنے میں معاون ہے، مددگار ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان کی یہ کوششیں قبول فرما، یا اللہ جو جان مال وقت صحت لگاتے ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت سے احسان کر، اور یا اللہ جو کچھ بھی تجھے پتہ ہے کہ ہمارے اس پلانس میں ہے، جو کچھ ہم ارادے کرتے ہیں، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما، اور یا اللہ جو کمی بیشی اس سے درگزر فرما، ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما، بھائی بہنوں کو، ان کی اولادوں، ان کے گھر والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، صحت اور عافیت دے، ہمارے استادوں پہ اپنا رحم فرما، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ اپنی رحمت میں رکھ، ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں یا اللہ، لیکن ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، یا اللہ تو ہماری غفلت کی سزا دوسروں کو نہ دے، یا اللہ تو ہم سب پہ اپنا رحم فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔